और हमारे बीच में स्वागत गीत प्रस्तुत करने, खुशी का इजहार करने, बीच में स्वागत गीत प्रस्तुत करने, खुशी का इजहार करने, आपका वेलकम करने हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे दो रतन, हल्दर भाई और निरंजन भाई। बहुत ही सुंदर बोल है इनके, शीश महल बनेगा एक दिन मीठा ये मधुबन, तब तो शिव ने रचा यहाँ पर भट्टी का आयोजन। तो सुनते हैं इनके ही मुखारविंद से, दोनों भी भाई समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं हॉस्पिटल में।
ओम शांति। भरतपुर की कविता दीदी, भरतपुर की कविता दीदी, बढ़ाती सबका उमंग, तरसाली की तरलिका दीदी, सिखाती जीने का ढंग, शशि दीदी शिलु दीदी को देखो, शशि दीदी शिलु दीदी को देखो, करते कितना जतन, वाह रे बाबा वाह दीदिया, गाता है मधुबन, गाता है मधुबन। जोरदार तालियां इन दीदियों के लिए।
रखना किस्मत मिला है का पूरा लाभ उठाना। नस नस में बसे हो मीठे बाबा, ये एहसास हो जाए। मीठे बाबा मीठे वतन से स्नेह के पुष्प बरसाए, स्नेह के पुष्प बरसाए। कविता दीदी तरलिका दीदी का करते हैं वंदन, मधुवन वाले बाबा करते आपका अभिनंदन। शीश महल बनेगा एक दिन मीठा ये मधुवन, तब तो शिव ने रचा है यहाँ पर, तब तो शिव ने रचा है यहाँ पर भट्टी का आयोजन। मधुवन वाले बाबा करते आपका अभिनंदन, मधुवन वाले बाबा करते आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन।
बीच शशिबेन जी आ गए, इनका भी हम स्वागत करते हैं।
तो हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी पधारे हैं। एक हाथ हिलाकर हम दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे आजकल आप सभी जानते हैं कि दादियां तो अभी आगे की यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ नीचे हैं। मधुबन में तो हमारी ये दो ही बहनें हैं जो दादियों का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। तो दीदी पूरा ही मधुबन को दादी की जिम्मेवारी अपने कंधे पे लेके देखते हैं, फिर भी बहुत लाइट और बहुत मिलनसार। और आप स्पोर्ट्स विंग के चेयरपर्सन भी हैं। मधुबन में हर आने वाले को दादियों की पालना भी आप देते रहते हैं। तो ऐसी हमारी दीदी से अभी हम सुनते हैं शुभकामनाएं, शुभ प्रेरणाएं, आदरणीय शशि दीदी जी।
ओम शांति। बाबा के विशेष रतन और बाप दादा दादियां चाहे एडवांस सेवा पर हैं, लेकिन दादियां सदा हमारे साथ हैं। कितना भी कहे, बाबा ने भी कहा है कि बाबा भी साथ हैं, और जब तक बच्चे तैयार नहीं होते हैं तब तक बाबा भी नहीं जाएंगे, बाबा बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा मुरली के अंदर भी बैठ बातें करते हैं, और बाबा भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते हैं कितना टाइम और चाहिए। ब्रह्मा बाबा का कितना प्यार है आप सबसे, कहते हैं मेरे बच्चे तो तैयार हो रहे हैं, हो जाएंगे। बाबा ये नहीं कहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत नौटी हैं, सुनते नहीं हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे बाबा कभी नहीं कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, मेरे सब लाडले बच्चे हैं, तैयार हो रहे हैं, हो जाएंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। तो बाबा हमारे साथ हैं, दादियां हमारे साथ हैं, सारा कार्य करने वाला कौन है, बाबा है और दादियां हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो केवल देखते हैं कि दादियों ने क्या किया, बाबा ने क्या किया। वो अभी भी वतन से बैठ करके कार्य करते हैं और गाइड करते हैं। तो इसलिए हमें ये खुशी रहती है कि बाबा हाथ पकड़ करके चला रहा है और बाबा ही ये कार्य कर रहा है, और हम तो कुछ भी नहीं करते ना। बाबा कहते हैं मैं कराने वाला हूँ, चाहूँ तो किसी से करा दूँ। तो इसलिए मधुबन बाप दादा की श्रेष्ठ चरित्र भूमि, दादियों की विशेष श्रेष्ठ कर्म भूमि, बाप दादा की विशेष पालना की भूमि और वरदानी भूमि में भरतपुर और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों का बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ये भी एक बहुत सुंदर भाग्य है कि जो मधुबन के अंदर आप सबको बट्टी करने का सुंदर मौका मिलता है। और पहले तो क्या था कि यहाँ ही सारे कार्यक्रम होते थे, साकार बाबा के टाइम पर छोटे छोटे ग्रुप आते थे, बाबा उनको तपस्या में बिठाते थे। जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद फिर दादियों ने भी कई प्रकार की बट्टियां रखी। उन बट्टियों में पहले टीचर्स बहनों की बट्टी रखी, कुमारियों की बट्टी रखी, फिर और पढ़ाई वाली कुमारियों की, फिर नौकरी वालों की, फिर इसके अलावा सारी टीचर बहनें माताओं की बट्टियां यहाँ चलती थी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर तपस्या और प्यारे बाप दादा के वरदानों की वर्षा सदा होती रहती हैं। तो इसलिए जो भरतपुर और उससे संबंधित जो भी भाई बहने आए हैं तो उनको भी बाप दादा देख करके कितना न खुश हो रहे होंगे। और आप सबको तो लगता है हम बहुत खुश हैं, है ना। तो बाबा ने ही कहा कि भरतपुर क्या है, भरतपुर भी एक राजाओं की राजधानी, ठीक है ना। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम सतयुग दुनिया में जाओगे वहां पर राजा महाराजा महारानी इस प्रकार से आप ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां पर राजा रानी की दुनिया नहीं कहेंगे, वहां पर सब राजा बच्चे। बाबा कहते मेरे राजे बच्चे आ गए, मेरे लाडले बच्चे आ गए। वहां पर हम सब कैसे होंगे, राजे बच्चे होंगे और बहुत प्यार से मां रहेंगे, बहुत मजे से रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से रहेंगे। वहां पर आपको रहने के लिए क्या मिलेगा, कितना सुंदर महल मिलेगा। कितना बड़ा महल चाहिए है, भरतपुर जितना तो चाहिए ना, है उतना ही चाहिए ना। या जो भरतपुर के पास जू है उतना ही चाहिए, जू में तो पर जो चिड़िया कहाँ कहाँ के देश विदेश के पंछी आते रहते हैं, उसको देखने के लिए आते रहते हैं। जू जितना चाहिए या भरतपुर जितना चाहिए है, जयपुर से दिल्ली तक बस इतनी लिमिट रखनी है बस ना। अरे बाबा कहते सारी दुनिया आपकी है, आप ही विश्व के मालिक हो, जो चाहिए वहां थोड़ी हमने कहना है हमारा ये घर है आपका ये घर है। पुष्पक विमान में बैठो, बटन दबाओ, जहां चले जाओ। वहां कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम इस नदी को क्रॉस करके, सागर को क्रॉस करके आ गए, ये पहाड़ों को आ गए, हमारे देश में आ गए, इस सीमा में आ गए। वहां अपना ही सब कुछ है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो सारी दुनिया हमारी है, सारी विश्व अपना है, सारा घर अपना है। कहीं भी घूमो, चाहे छोटा बच्चा है, चार साल का बच्चा है, वहां तो सब एक्सीडेंट प्रूफ है। चार साल का बच्चा बैठ जाए, बटन दबाया, उड़ गया, उसको ये भी नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहीं भी जाएगा, बटन बंद हो गया, वहां उतर जाएगा, घूम फिर के खा फिर करके वापिस आ जाएगा। और वहां पर फिर और क्या करेंगे, रास करेंगे। और कहाँ रास करेंगे, जमुना के किनारे पे, श्री कृष्ण के साथ नहीं करेंगे ना, जमुना के किनारे पे। बोलो श्री कृष्ण की राजधानी में जाना है। श्री कृष्ण की राजधानी में जाना है। श्री कृष्ण कहते ना अकेला रास करेगा क्या, उसके साथ गोप गोपियां होंगी और ग्वाल होंगे, सब करने वाले होंगे, तो हम भी उनके साथ होंगे। तो बाबा ने कहा है कि आप सब जो ऐसी धरनी पर रहते हैं तो उनके अंदर वही संस्कार होते हैं, रॉयल संस्कार। तो बाबा ने हमको क्या कहा है कि हमें अपने अंदर रॉयल संस्कारों को भरना है। और रॉयल संस्कार तो है ही है हमारे अंदर, लेकिन वो जो मर्ज हो गए हैं उसको कैसे इमर्ज करना। तो रॉयल संस्कार को इमर्ज करने के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा आपको अवसर दिया है कि बट्टी में आने का। तो भट्टी में आना मीन्स अपने अंदर अपने ऊपर विशेष ध्यान देना। भट्टी तो कई की है, आप वहां पर भी करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बहनें आती हैं, कहां कहां से सीनियर बहनों को बुलाते हो, वहां पर भट्टियां करते रहते हो, कितनी गहरी क्लासेस सुनते रहते हो, लेकिन गहराई में जाकर के अपने अंदर जो ओरिजिनल संस्कार हैं, उन संस्कारों को इमर्ज करना, उसका स्वरूप बनना, उसका अनुभव करना, ये है भट्टी में आने का सुंदर मौका। तो इसलिए जो भट्टी में आए हैं, फिर बाबा ये भी कहते हैं कि आप भट्टी में आए हो तो फिर क्या करना है, फरिश्ता बनना है। हम आपको साकार बाबा की बात सुनाते हैं, तो साकार बाबा की बात सुनाते हैं। साकार बाबा के टाइम पर बहुत थोड़े बच्चे होते थे, कभी 15-20 आ गए तो अच्छा, कभी 50 आ जाए बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, अरे बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, क्योंकि उस समय तो इतनी रहने की जगह भी नहीं थी, ये भी नहीं था। तो बाबा क्या करते थे, बाबा खुद उस समय तपस्या करते थे, और तपस्या करते हुए सब बच्चों को सारे पांडव भवन के आंगन में चक्कर लगाते। मैं आपको बताती हूँ 1966 की बात है, जब पहली प्रदर्शनी निकली, भारत के कई स्थानों पर लगाई गई, तो पहली प्रदर्शनी यहाँ माउंट आबू में लगाई थी, और वो प्रदर्शनी लगाई थी जो आध्यात्मिक संग्रहालय ना उसके सामने उस समय एक विश्राम भवन था, अभी तो वहाँ होटल बना, फिर कोई दुकान खुल गई, वहां पर लगाई थी। तो उस समय बाबा ने क्या किया था, सब महारथी दादियों को और महारथी भाइयों को बुलाया था, और उस समय हमको भी मौका मिल गया यहाँ पर रहने का, और बहुत समय रहने का मौका मिला, 2 महीने बाबा के साथ रहने का मौका मिला। तो उस समय बाबा की तो बहुत सी बातें हैं, तो बाबा उस समय क्या करते थे, अमृत वेले योग के बाद, गर्मियों का महीना था, मई जून का महीना था, अमृत वेले योग के बाद बाबा बाहर खड़े हो जाते थे, वहां से खड़े होकर के सबको दृष्टि देते, और दृष्टि देते देते बाबा फिर आते थे निव्या भाई के ऑफिस के सामने सीढ़ियों पर खड़े होकर के, वहां सबको दृष्टि से वरदान देते। फिर उसके बाद जो हमारा ऑफिस है उसके बाद थला है, वो जो थला है वो थला नहीं, वो पहाड़ी है, वो बाबा के उसको पहाड़ी को ही थला बनाया हुआ है, और जो हमारा ऑफिस है वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी के ऊपर ऑफिस बना हुआ है। बाबा के टाइम पर वहां पर एक छोटा सा बगीचा था, वैसे तो एक बड़ा बगीचा ये था, वो ऑफिस में भी बगीचा था, तो बाबा वहां आकर के खड़े हो जाते थे और बहुत देर तक दृष्टि देते थे, और दृष्टि दे करके बाबा फिर पांडव भवन के गेट के पास जाते, फिर बाबा कहते बच्चे फरिश्ते बन के सारे विश्व में उड़ जाओ, अरे इंडिया ही नहीं देखा तो विश्व में कहाँ उड़ जाएंगे। तो उस समय बाबा ने अभ्यास कराया था, और वो जो थला है, अभी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो दादी के टाइम पर क्या, हमारे ऑफिस के बाद जो थला है वहां पर 10-20 बैठे रहते थे, तो एक दिन दादी वहां से निकली, कहती तुम सब यहाँ बार बार क्यों बैठते हो। तो भाइयों ने बोला दादी हमको यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। कहा यहाँ धरना लगा के क्यों बैठे हो। बोला नहीं दादी हमको बड़ा अच्छा लगता है। दादी ने कहा पता क्यों अच्छा लगता है, यहाँ बाबा खड़े रहते थे काफी टाइम पर, और बाबा खड़े होकर के बहुत दृष्टि देते थे, इतना अच्छा वो वरदानी जगह जहाँ बाबा के कदम पड़े और क्या नहीं है। तो उस समय बाबा क्या कहते थे, बच्चे सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाओ। अब और भी कहानियां मैं आपको सुनाने लगी तो खत्म ही नहीं होंगी, हैं बहुत सी बातें हैं, हैं? हाँ वो भी सुनाती हूँ। अच्छा अभी आपको बताएं, आप कहेंगे ना कि हमको बाबा की पहाड़ी पर जाना है, हैं जाना है पहाड़ी पर, नहीं जाना है, हम तो नहीं भेजेंगे आपको, बिठा देंगे वहां से उठाएंगे नहीं, ठीक है, उस पहाड़ी पर हम बिठा देंगे उठाएंगे नहीं, ठीक है, बैठे रहोगे, हिलोगे तो नहीं, इधर तो नहीं देखोगे, कोई आया उसको देख लिया, अभी देखा ना कोई आई थी बात कर रही थी उधर देख रहे थे, देखा था ना, हैं? मैं पहाड़ी पर ऐसा बिठाएंगे आपको हिलने नहीं देंगे। अभी आपको बताएं जहां बैठे हो ये बाबा की पहाड़ी है, मालूम है आपको, ये बहुत बड़ी कहानी है, ये पहाड़ी है, आपने एक चित्र देखा होगा जहां बाबा ऐसे तपस्या कर रहे हैं। तो जब बाबा थे साकार में, जब बाबा अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त बाप दादा पहले बाबा के कमरे में आते थे, फिर उसके बाद अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आने लगे, और उसके बाद बहुत एक बार बहुत बड़ा ग्रुप आ गया। रहने की भी जगह नहीं थी, किसको पट में सुलाया, किसको कहाँ सुलाया। तो बाबा की जो पदरामणि हुई, जो आंगन है ना, बाबा का ऑफिस है, उसके बाहर स्टेज बनाई गई थी, और शाम के टाइम बाबा आए और चारों तरफ फरिश्ते बैठे, कोई छत पे बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई इस पहाड़ी पर बैठा है, तो बाबा की मुरली चल रही थी। तो उस समय उसके बाद ये प्लान किया गया कि बाबा के बच्चे तो बहुत बढ़ेंगे, और बाबा कहते हैं कि आगे चल करके बहुत बच्चे आएंगे, यहाँ पर लाइन लगेगी तो कहाँ बैठेंगे। तो फिर प्लान किया गया, तो इस पहाड़ी को तोड़ करके ये हॉल बनाया गया। ये पहाड़ी जो है, बाबा की पहाड़ी है, इसको तोड़ करके हॉल बनाया गया। 1975 से अव्यक्त बाप दादा इस हॉल में आते रहे। तो इस हॉल की दो विशेषताएं हैं, एक तो साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी, दूसरा बाबा यहाँ खड़े हो जाते थे और आंगन में दादियां होती थी, गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो सारे ऊपर आ जाते थे। फिर बाबा कहते बैठो बैठो सब सेमिनार करो, सेमिनार मीन्स योग तपस्या करो, फिर उस समय बैठ के तपस्या करते थे। तो एक तो साकार बाबा की ये तपस्वी पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी पर बैठे हो कि नहीं है, अब कहाँ जाओगे, जब बैठ ही गए तो कहाँ जाओगे है? अभी जाने का नाम नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरा जो है, अव्यक्त बाबा जब आते थे यहाँ पर सीट होती थी, और हम सब बाबा के लाडले पुंगड़े, जिसको कहते हैं ना बिल्ली के पुंगड़े, छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ घेर के बैठे रहते थे, जैसे कि फैमिली फीलिंग होती थी। और उस समय कोई सोफा नहीं होता था, एक कुर्सी होती थी दीदी मनमोहिनी जी के लिए, और बाकी दादी प्रकाशमणि सबके सब नीचे बैठते थे। और अभी बाबा ने कितना सुख दिया आप सबको, क्या दे दिया, पहले हम सब पट राणा पट राजे होते थे, और अभी क्या है, हैं अभी क्या हो, हैं बोलो बोलो क्या हो, हैं अभी क्या सोफा राजे हैं नहीं, अभी ऐसा कहेंगे दिल तख्त नशीन राजे और रानियां, है ना, बाबा के दिल तख्त पर है ना, ये तो बाबा ने बनवाया है, हमने थोड़ी किया। तो बाबा तो अपने बच्चों को हर तरह का सुख देते हैं। आज भी बाबा मुरली के अंदर बता रहे थे कि जितना है उसका यूज करो, ठीक है ना, विनाश होगा, तो इतना बाबा बच्चों को सुख देते हैं। तो ये जो हॉल है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस स्थान पर बाबा आकर के, कई कहते हैं ना आते, अरे अरे हमने तो बाबा को देखा नहीं, दादियों ने देख लिया, क्या होगा हमारा भाग्य ऐसे ना, हम क्यों देरी से आए। बाबा कहते जो देरी से आए उसको मैं ज्यादा देता हूँ, घर में छोटा बच्चा होता है उसको कितना प्यार करते हैं ना, प्यार करते हैं उसको, भरपूर करते हैं। तो छोटा है, इसको तो जितना खिलाओ सारे खिलाएंगे, वो माँ बाप भी खिलाएंगे, बड़े भाई भी खिलाएंगे, बड़ी बहनें भी खिलाएंगे, छोटे बच्चे को तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो आप सब जो नए आए हैं, तो उसको बाबा इतना भरपूर करेगा, इतना भरपूर करेगा, आपको समाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। फिर देखना झोली खाली ना हो जाए, छेद ना कर देना झोली में, है हो जाता है ना। फिर बाबा कहते हैं नहीं, मैं बच्चों के साथ हूँ और बच्चों को साथ लेके जाता हूँ। बाबा ने ये भी कहा है कि मैं बच्चों को छोड़ करके तो नहीं जाऊंगा, जब तक मेरे बच्चे तैयार नहीं होते हैं तो मैं बच्चों के साथ हूँ। फिर दूसरी बात है कि इस भट्टी में देखना, आप ये मत कहना कि बाबा को हमने नहीं देखा है ना, तो बाबा आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, उस समय आप क्या करोगे, बाबा को देखोगे, यहाँ देखोगे या पीछे देखोगे या आगे देखोगे, हैं? अगर इधर उधर देखा तो फिर क्या होगा, बाबा जो वरदान दे रहे वो वरदान फिर दूसरे को मिल जाएगा। कभी कभी होता है ना, बैठे अरे मेरे को तो इन्होंने दृष्टि दी नहीं, बहन जी जो योग लगा रही थी उसने तो मेरे को दृष्टि दी नहीं, मैंने दृष्टि ले, और बाबा दृष्टि दे रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबको बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम आए हैं, बाबा के पास आए हैं, बाबा से भरपूर होने के लिए। और दूसरी बात, आप सबको लगता है मधुबन निवासी यहाँ बहुत हैं, चलो एक एक से मिल रहे, एक एक से बात कर ले, एक एक से ज्ञान की चर्चा कर ले, और जितनी ज्यादा चर्चा करेंगे उतना साइलेंस का अनुभव कम होगा। तो बाबा ने अभी कहा है बच्चों को साइलेंस का अभ्यास करना। तो जैसे बाबा कहते ना फरिश्ते बन करके उड़ो, तो अब फरिश्ते बन करके उड़ने के लिए आपको क्या करना है, अभी बाबा आपको एक बहुत बड़ा रॉकेट देंगे, उस रॉकेट के अंदर बैठ करके सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाना। रॉकेट कौन सा होगा, एक है वो दुनिया वाले साइंस के द्वारा रॉकेट बनाते हैं, और हम बच्चे साइलेंस के द्वारा रॉकेट में बैठेंगे। रॉकेट का देखा ना, सुनते हैं तो होता बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतना लाइट होता है, इतना लाइट होता है, वो आसमान तो क्या, चंद्रमा सूर्य तक भी वो चला जाता है, तो इसलिए वहां तक भी वो पहुंचता है। और रॉकेट में जो जाते हैं उनका पता है ड्रेस देखने में बहुत फूली हुई होगी, बहुत बड़ी फूली हुई होती है, लेकिन इतनी लाइट ड्रेस होती है। और उनका खाना क्या होता है, खाना नहीं खाते वो, ऐसे रोटी सब्जी वो नहीं खाते, उनका तो एक पाउडर लिक्विड टाइप होता वो खाते हैं। तो बाबा कहते देखो अभी हमें किस रॉकेट में बैठना है, बाप के प्यार के स्नेह के झूले के रॉकेट में बैठना, ठीक है। और दूसरा हमारी ड्रेस कौन सी होगी, आपकी ड्रेस कौन सी होगी, फरिश्ता ड्रेस होगी। फरिश्ते ड्रेस में कैसे होंगी, सादी होगी, चमकीली होगी, क्या होगा उसमें, चमकीली है, चमकीली होगी या कुछ और भी होगा, देखो वो आपकी ड्रेस क्या होगी, उस ड्रेस में ना बहुत सुंदर सुंदर स्टार्स होंगे। लेकिन वो स्टार्स कौन से होंगे, बाबा ने बताया ना, बाबा बच्चों को कितने टाइटल्स देते हैं, कितने वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं मेरे नूरे रतन हैं, मेरे आंखों के तारे हैं, और सारे विश्व के दीपकों के सितारे हैं, और बाबा कहते सिक्की लदे बच्चे हैं। बाबा कितने टाइटल देते हैं, वो सारे टाइटल्स को स्टार बना दो और ड्रेस पे लगा दो, सारे टाइटल्स की माला बना लो, है ना। बाबा कहते ना माला पहनो, बाबा कभी कभी कहते माला का दाना बनो। बाबा बच्चे कहते हम कैसे बनेंगे, हम तो बन नहीं सकते। बाबा कहते आप तैयार तो हो जाओ, मैं एक माला, दूसरी माला, तीसरी माला, वो जो मालाओं को ढेर मालाएं होती है ना, वो कितनी अच्छी लगती है, बहनों को अच्छा लगता है ना, सिंपल माला नहीं, उसके आगे वो बन जाता है, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बन जाते। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों का श्रृंगार करता हूँ, बच्चों का श्रृंगार करता हूँ टाइटल्स के द्वारा। लेकिन वो श्रृंगार जो है स्टार की तरह है, लेकिन बच्चे जो है वो उनको एक साइड में रख देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सदा लाइट फरिश्ते रहो, फरिश्ते के साथ साथ जो बाबा हम बच्चों को टाइटल्स देते हैं वो टाइटल्स को भी अपने जीवन में अपना करके उसका स्वरूप बन करके उड़ते रहो, हल्के रहो, और सारे विश्व का चक्कर लगाओ, और सारे विश्व के अंदर साकाश फैलाओ। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बैठे बैठे थक तो नहीं गए, 5 बजे से बैठे हो हैं, थक तो नहीं गए, पर पहाड़ी पर बैठे कहाँ थके, है ना। अच्छा हो गया ना, मौका मिल गया, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी, ठंडा मौसम होता है, कमरे में थोड़ी ठंडी होगी, यहाँ तो गर्म है, आराम से बैठते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से रहना, बाबा की गोदी में रहना, और आराम से है ना सब, कोई तकलीफ तो नहीं है। अभी आप देखो ना जम्मू कश्मीर उधर हिमाचल की तरह देखो बर्फ पड़ रही, उधर जाते हैं वैष्णो देवी जाते हैं, रास्ते में बर्फ पड़ती है तो रास्ते में कहाँ बैठ जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा क्या कहते हैं कि मेरी गोदी में बैठे। बाबा के टाइम पर सब पट पे ही सोते थे, कोई खटिया नहीं थी, कुछ नहीं था, और अभी तो सब खटिया है, आराम से रहते हैं, और बाबा कहते हैं आराम से रहे। तो बाबा ज्ञान और योग के द्वारा भी भरपूर करेंगे, स्थूल सूक्ष्म भी बाबा बच्चों को भरपूर करेंगे, और सदा भरपूर रहना है, और इतने अच्छे अच्छे गहरे गहरे अनुभव करेंगे, और वो अनुभव साथ लेकर उसके स्वरूप बनना है। तो फिर से आपका स्वागत है, और भट्टी में आने से आप सबका स्वागत में मुख मीठा कराएंगे, बाबा की और बच्चों की रू रूहान सुनाती हूँ। शुरू में जब बच्चे आते थे, कभी कभी बाबा आंगन में खड़े होते थे, बाबा उनका स्वागत करते थे। और दादी के टाइम पर भी हम देखते थे, कभी कभी बच्चे आंगन में आए, दादी उनसे मिलती, स्वागत करते, फिर कहते अभी हम दादी से मिले नहीं है। अरे अभी तो मिले थे, क्यों नहीं मिले हो? टोली कहाँ खाई है? टोली खाना मीन्स मिलना। टोली खाना क्या है? टोली क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? तो इसलिए आप सबका प्यारे बाबा टोली के द्वारा स्वागत करेंगे। और अभी हम सभी दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, और उसके बाद पहले भाई आएंगे, टोली यहाँ से लेंगे, मास्क डाल के आएंगे, हाथ लंबा करेंगे, और फिर यहाँ से लेके इधर से जाएंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो चप्पल तो आपके यहाँ है, तो इसलिए। तो फिर बहने आएंगी टोली लेकर के, खाने पर जाएंगे। अच्छा, कोई डायरेक्शन तो नहीं देने ना? क्या है? अच्छा, सेवाधारी जो बैठ जाए ना, तो अच्छा अभी क्लास तो नहीं है ना यहाँ पर? नहीं। अच्छा, टोली लेने के बाद जो सेवाधारी है वो यहाँ बैठ जाएंगे, ताकि टोली के बाद फिर आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति।